किस प्रकार से उन्होंने भारत के लिए अपना सारा राज्य और संपत्ति छोड़कर वन में चले गए, और आजकल संपत्ति के लिए राजा लोग, साधारण आदमी भी अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं थोड़े से स्वार्थ के लिए, स्त्री पति को, पति स्त्री को छोड़ देता है। और पहले कैसा था त्रेता युग में, अपनी मैया ने कहा और उन्होंने राज्य छोड़ दिया, वन वन में भटके, सीता जी की चोरी भी हुई, रावण चुरा करके ले गया। फिर रामचंद्र जी ने किस प्रकार से रावण को वंश के समेत ध्वंस करके सीता जी को प्राप्त किया, और सीता जी को प्राप्त करने के बाद में सीता जी को जब लाया गया, उन्होंने कहा कि मैं तो वंश परंपरा की लज्जा रखने के लिए रावण को मारा है, तुम्हारे लिए नहीं। जो स्त्री को चुरा ले जाए उसको मारना क्षत्रियों का धर्म है।
क्या हो गया?
इसलिए मारा। और सीता जी आपकी नजर जाना है, चले जाइए, मेरे पास में तो नहीं आता। सीता जी छोड़कर के लक्ष्मण जी से कहा, सीता बनाओ, हम उसमें जल करके भस्म हो जाएं। लक्ष्मण जी रामचंद्र के ऊपर में बिगड़ गए, क्रोधित हो गए, फिर भी उनके आदेश को तो पालन करना ही था। सीता बनाई, सीता जी ने प्रवेश किया और अग्नि ने साक्षात उन्हें धारण करके और सीता जी को कहा कि पवित्र है। बाद में अयोध्या आए, कुछ दिनों के बाद में सीता जी को सुभद्रा के लिए वनवास दे दिया। ऐसी करुणामय लीलाएं हुई। तत्पश्चात कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लीला के लिए, जन्म के लिए क्या कारण थे, किस लिए वो आए? केवल पृथ्वी का भार करने के लिए नहीं, ये तो महाविष्णु भी कर सकते हैं, कुछ जरूर गूढ़ रहस्य होगा। वो क्या है अभी रसानंद जी संक्षेप में कुछ बतलाएंगे। बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई उनको तो कहाँ है, कथा बड़ी रसीली और सिद्धांत पूर्ण चल रही है, आप लोग खूब मन दे करके सुनेंगे। ऐसी कथाएं सब जगह नहीं होती हैं।
ये साधारण
स्थापक और अपराध भक्तों का रखा है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण जो अवतीर्ण हुए हैं इसका और कुछ कुछ विशेष कारण है। यदि किसम का भगवान का साधारण अवतार भी कर सकते हैं, मत्स्य उर्मा वराह नृसिंह बामन यदि अलग अलग अवतार लोग भी आकर के ये कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण क्यों अवतीर्ण हुए? श्री रविकर्ण को कहते हैं उसका एक कारण बताए, भगवान एक आत्मा राम जो मुनि है उनको आकर्षण करने के लिए भी कृष्ण जगत में प्रादुर्भूत हो गए। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी वो ब्रह्मा ध्यान में मग्न थे, लेकिन जब वो बहेलिया में जिस समय तोते पकड़ने जा रहे थे व्यासदेव जी ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहते तोतों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। कहते मेरा भी कहीं एक तोता उड़ करके चला गया, क्या मेरे तोते को पकड़ करके ला सकते हो? कहते जंगल में तोते बहुत है, लेकिन हमें क्या पता आपका तोता कौन है? कहते मेरा तोता कोई साधारण नहीं, मैं एक मंत्र सिखाता हूँ, तुम लोग यह मंत्र को बीच बीच में बोलते रहना, मेरा तोता अपने आप पकड़ में आएगा और भी बहुत सारे तोते अपने आप तुम्हारे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तो बताओ। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत सबसे जो अनूठा रूप है, कृष्णा कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, जिस रूप को देख करके स्वयं कृष्ण भी मुक्त और मोहित हो जा करके कृष्ण कहते हैं अपर कलित पूर्वम कस्मात् कारकारी। कृष्ण जब अपना रूप को अपनी मणि स्तंभ में प्रतिबिंब होते हुए देखते हैं, कृष्ण कहते हैं कौन है? कभी ये रूप हमने कभी देखा नहीं, अयम का नहीं कौन है? कृष्ण अपना प्रतिबिंब को देख करके कृष्ण इतने मुक्त हो जाते हैं, उनको मन में इच्छा होता है तब मैं राधा रानी बन जाऊं, अब बन करके ये रूप हमें आलिंगन करूं। कृष्ण इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं कृष्णा, और कृष्ण जब ब्रज में प्रकट होते हैं यदि कृष्ण माधुर्य सुनी वासुदेव को, यदि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का स्वरूप माधुर्य को श्रवण करके जो द्वारकाधीश जो कृष्णा वो भी मुक्त हो जाते हैं, ब्रजेंद्र नंदन का स्वरूप इतने सुंदर और इतने मुक्त करे, इसलिए उन्होंने वह श्लोक को उनको सिखाया, वराह पीड़म नटवर बपुः कर्मयोः कर्मिकारं विभ्रद्वास कनक कपिशयं वैजयन्ति च मालां रन्ध्राण पैन्द्रद्रसुतया पुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्तत् गीतकम्। यह कृष्ण का अलबेला रूप का अपूर्व सौंदर्य है, जिस एक श्लोक की जो एकदम परिनिष्ठता की निर्गुण ने जो सुखदेव गोस्वामी निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे संपूर्ण उसमें डूबे हुए थे, लेकिन कृष्ण रूप का इतने माधुर्य था, कृष्ण इतने सुंदर था जो केवल कृष्ण की एक सुंदरता पर सुंदरता की श्लोक को सुन करके उनका ब्रह्म ध्यान टूट जाता है, ब्रह्म ध्यान उनको टूट गया और वो एक इतने सुंदर रूप जगत में भी हो सकता है इतना सुंदर रूप, वो निकल के क्या आगे पूछे इस श्लोक तुमको कहाँ से मिला? बोले हम तो तोते पकड़ने आ रहे थे, एक साधु ने बोले हमारा भी कहीं तोता उड़ कर चला गया है, उन्हें कहा मेरा तोता को पकड़ने के लिए तो ये श्लोक को हमें बोले, कहते भाई वही तोता, बोले कुछ गुण भी है कि नहीं, हमको पूछ कर खाना कुछ गुण भी है कि नहीं। फिर दूसरी बार हमने अमोघ की अपना उनका गुण की बात हम क्या बताएंगे, ऐसे गुणवान के जगत में कोई है ही नहीं, इतने गुणवान है जो उतना जो बच्चों की खून पीने वाली चूसने पीने वाली बच्चों को मारने वाली ऐसे उतना केवल ऊपर का रेस थोड़ी सी माता की बना करके आई, केवल थोड़ी सी उन्हें नाटक की एक भैया जसोदे ऐसे लाला को थोड़ी सी ला कर रखते हैं, उसको तो हर समय लाड़ डाल राम को छोड़ करके हम किसको चरणों में शरणागत हो पाएंगे। इसलिए श्री कविवर्ण को कहते हैं भगवान जो कृष्ण, इसलिए उन्होंने सुंदर सुंदर लीला की जो आत्मा राम में और जो निर्गुण ब्रह्म में जो निष्ठ ऐसे व्यक्तियों को आकर्षण करके अपना प्रेम रस में मधुर रस में डूबने के लिए ही भगवान एक कृष्ण अवतार ग्रहण किया है। और दूसरे दूसरे टीकाकार कहते हैं और बहुत कारण बता रहे हैं। दूसरे दूसरे अवतार में जैसे दंडकारण्य का ऋषि लोग, वे लोग गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे थे। अभी रामचंद्र जब दंडकारण्य में पहुंचे, अभी राम और श्याम में देखने करके बराबर है, लेकिन वो मंत्र उपासना कर रहे थे गोपाल मंत्र की। रामचंद्र का स्वरूप दर्शन करके उनके हृदय में करके रूप बराबर है, उनके हृदय रूप को देखकर मुक्त हो गए और उनको प्रतिरूप में कामना किए और बड़े दीन सिंह मंत्र जप कर रहे थे, लेकिन मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही थी। मंत्र जप में और भजन में उनका अग्रसर नहीं हो रहा था, लेकिन राम रूप में प्रकट होकर के बोले इसी अवतार में नहीं, मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए अभी उन लोगों का इच्छा पूरी करना है। और रामचंद्र जब हर सालों में एक एक जो राजस्व जो यज्ञ करते थे, अश्वमेध जो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में हर साल एक एक सीता देवी बनाया करते थे, क्योंकि स्त्री के बगैर ये यज्ञ नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा दूसरे ने कहा शादी कर दो, शादी कर दो। रामचंद्र ने कहा मैं दूसरे शादी नहीं कर सकता। और कोई उपाय है? हाँ, अगर स्वर्ण सीता बना करके अपना बाम पास में रख करके फिर तो आप यज्ञ कर सकते हो, तो आप वैसे कर सकता हूँ। तो हर साल उन्होंने एक एक यज्ञ की, तो कितने सारे सीधे नाम गई सकते हैं। देखो सब के सब सीधा अभी कृष्ण अवतार में सब के सब ये गोपी बन करके आई है। और जो शुद्ध चरी मुनि चरी और मंत्र के जो बड़े बड़े जो मंत्र वो जो गोपी भाव से उपासना कर रहे थे, हम कृष्ण को प्रतिरूप में मिले और सबके सब इच्छा पूरी करने के लिए अभी भगवान कृष्ण ये द्वापर युग में अभी भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए। और अभी कल आप लोगों ने श्रवण किया जब भगवान वामन अवतार धारण करके बलि महाराज के दरबार पर पहुंचे, इतने सुंदर थे वामन देव तो सख्या भगवान, इतने सुंदर बहुना स्वरूप बलि महाराज का बेटी रत्नमाला उसका रूप देखकर मुग्ध हो गई। क्या सुंदर बच्चा, अरे एक से लाला होता है ना, हर समय हम उसको लाड़ लड़ाते रहते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा कर्म करो सभी का इच्छा पूरी करते हैं। भगवान क्या देखो इसी अवतार में मैं तुम्हारा इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा द्वापर अवतार में द्वापर युग में ही मैं तुम्हारा बेटा बनता। अभी जब भगवान दो पग में संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने माप लिया, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान है नहीं, उसी समय भगवान गरुड़ को बोला गरुड़ इसको अभी नाग पास मंदिर में बांध दो। जब गरुड़ ने उनको बांध दिया रत्नमाला देखिए आ रही है, तो देख दिखने में बड़ा छोटा सा लग रहा था लेकिन तो बड़ा छोटा सा है, ये तो दो पग में संपूर्ण पृथ्वी माप लिया और तीसरे पग रखने के लिए स्थान देकर मेरे पिताजी को उन्होंने बांध दिया। अगर तुम्हारा बेटा होता ना तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं जहर भी मैं पी लूंगी। इसलिए मानव भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान द्वापर युग में कृष्ण रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। और ऐसे ही बहुत बहुत सारी कारण से कृष्ण अवतार में भगवान आकर के दूसरे दूसरे अवतार में प्रभु जिनियों को इच्छा पूरी नहीं कर पाए, जिसमें रामचंद्र जनकपुरी में भी गए थे, आज आप कथा श्रवण कर रहे थे, जब जनकपुरी में अभी राम लक्ष्मण वशिष्ठ जी को कहा हम थोड़ा ये जनकपुरी देखना चाहते हैं, जनकपुरी देखना नहीं जनकपुरी में जाओ दर्शन दिला करके आओ। अभी राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में गए, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, जब वो जनकपुरी में गए एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हो गए। इतने सुंदर राम और लक्ष्मण, उनका क्या चलना, क्या उनका स्वरूप, जिस गली में जाए उसी गली में जय जयकार। उसी समय जनकपुर की जो महिलाएं रामचंद्र का रूप देख करके वो भी मुग्ध हो गई, वो भी अपना मन मन में रामचंद्र को प्रतिरूप इच्छा की। भगवान का कोई चिंता नहीं, इसी अवतार में तुम लोग सबके सब द्वापर युग में आओ, द्वापर युग में ही तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। इसलिए भगवान विभिन्न कार्य को लेकर के भगवान द्वापर युग में हुए कृष्ण अवतार लेकर के आए, और विशेष करके हुए ब्रज रस रसिक शेखर कृष्ण परमतरुण। भगवान रसिक शेखर है, रस रस जो सर्वोत्तम अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण सारे रस जिनमें प्रकट है। इसलिए भगवान विशेष करके द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होकर के हुए जो सर्वोत्तम जो वस्तु है, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरित्र जो रस है, जो दूसरे दूसरे अवतार में दूसरे दूसरे युग में जिन जिन्होंने गोपी भाव से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इच्छा की, भगवान कृष्ण अवतार में ही जितने सारे इच्छा जितने सारे सभी को माधुर्य रस में डुबाने के लिए, अपना मधुर रस को पिलाने के लिए कृष्ण द्वापर युग में अवतीर्ण हुए। अवतीर्ण होकर के जीवों को ब्रज रस देकर के ब्रज भाव को देकर के भगवान सभी की इच्छा उन्होंने पूरी की है। और उसके अंदर में और बहुत से रस है, हम लोग शिल महाराज का उद्धार करना से कृष्ण का अवतीर्ण होने का तरह तरह का उद्धार से
बहुत बहुत सुंदर विचार। कृष्ण के अवतरित होने के कारण बहुत से बतलाए, इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण थे। गोलोक वृंदावन में कृष्ण का जन्म नहीं होता, वहां पर केवल भावना होती है जो कृष्ण ने जन्म लिया, बस वो अजन्मा है वहां। और वहां पर माँ यशोदा नंद बाबा सखाओं और गोपियों के साथ में उनकी तरह तरह की लीलाएं होती हैं, उसमें से केवल एक दिन की लीला को लेकर के जगत में आए हैं कृष्ण, एक ही दिन की लीला। रसिक शेखर है ये बतलाया, तो गोलोक वृंदावन में दास्य सख वात्सल्य और मधुर रस ये सब आस्वादन करते हैं। वृंदावन में गोपियों के साथ और द्वारकापुरी में सत्यभामा रुक्मणी के साथ में पत्नी के रूप में, यहाँ परकीय रूप में सब रसास्वादन करते हैं, किंतु जगत के लोग तो जानते नहीं, इसलिए उन्हीं परिकरों के साथ और लीलाओं के साथ में जगत में प्रकट हुए इस द्वापर त्रेता द्वापर के अंत में। और उन्होंने सबके साथ दास्य रस सखर रस वात्सल्य रस का आस्वादन किया, विशेष करके गोपियों के परकीय रस का भी आस्वादन किया। उसमें राधा जी कृष्ण की सबसे अधिक प्रेयसी हैं, ये भी जगत को दिखलाने के लिए जगत में उन्होंने रास की लीला की। उनके मदनक भाव इत्यादि को प्रकाश किया राधा जी ने, इसलिए प्रकाश किया कि जगत के लोग उस समय देखेंगे, दर्शन करेंगे, और पीछे वाले आने वाले दिनों में जैसे कि आजकल उन कथाओं को लोग श्रवण करेंगे, और श्रवण करके ही वो संसार से विरक्त हो जाएंगे और उन कथाओं में रम जाएंगे, और अंत में वे लोग भगवान की ऐसे ही कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का जिनों के स्वरूप में दास भाव है, वो दासों के अनुसार में जन्म लेंगे परिकर के रूप में। जो लोगों का स्वरूप सखरस का भाव का है, वो सिदाम सुबल इत्यादि के भावों का अनुसरण करके लोग उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त करेंगे, और जो वात्सल्य रस के हैं उतना केवल माता का वेश बना कर गई और लल्ला लल्ला कहा और उसको धात्री गति माता की जैसी गति दी, और जो सचमुच में जो यशोदा जी जैसे नंद बाबा जी जैसे कृष्ण को प्यार करना चाहते हैं पुत्र के रूप में, जरूर उनको वही भाव प्राप्त होगा। वेलेक भी उसी रूप में नंद बाबा के यशोदा मैया के आसपास के नागरिक रूप में जन्म ग्रहण करके कृष्ण की इन सब लीलाओं का आस्वादन करेंगे। और गोपियों की बात तो निराली ही है, इन गोपियों की कथा सुन करके जिन लोगों को लोभ होगा उसी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु राग मार्ग को देने के लिए आए कृष्ण हैं। तो लोग सुनेंगे और यदि अच्छी तरह से सुनेंगे तो ये जो चार रस बतलाया उनमें से किसी के एक रस में लोभ उत्पन्न होगा ही, और फिर उस लोभ के अनुसार में चिंता करते 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 भगवान के उस भाव को प्राप्त करेंगे। ये लीला का उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने सब परिकरों के साथ में जगत में अवतीर्ण हुए, और सुखदेव गोस्वामी को, व्यास को, नारद जी को जगत में भेजकर इन लीला कथाओं का जगत में प्रसार किया, प्रचार किया, और उन्हीं की परंपरा में अब हमारे गुरु वर्ग लोग देश में विदेश में इन कथाओं को प्रचार कर रहे हैं। आज विदेश के लोग भी इन पारकीय भाव को, वात्सल्य रस को, स्वकीय भाव को अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप लोग नहीं जानते उन लोगों को जानते हैं, और वे राधा दास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं। विदेशी लोग जो सुनेगा वो मन से सुनते हैं, इसलिए उन लोगों को ये भाव हृदय में उत्पन्न हो गया है। तो जो लोग सुनेंगे इन कथाओं को अच्छी तरह से, जरूर किसी न किसी एक भाव में लोभ उत्पन्न होगा, मैं ऐसे ही कृष्ण की सेवा करूं। आज जो मन से सुनेगा नहीं, कान से सुन करके इस कान से बाहर कर देगा, उन लोगों की स्वीकृति होगी, धन धन्य होगा, पुत्र लक्ष्मी यही प्राप्त होगा, भक्ति वैसी सुंदर नहीं होगी। इसलिए सुनो तो इन कथाओं को धारण करो और ऐसे ही हृदय में भाव जागृत हो। इसलिए संसारी कोई कामना बसता मत आओ, इसलिए कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार ग्रहण किया, लोगों का कल्याण हो और इस माया से पार करके मेरी सेवा को प्राप्त कर सके। अब सुनिए, जेल खाने के अंदर में देवता लोग उपस्थित हुए, और देवकी जी के गर्भ में कृष्ण हैं, उनकी प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना किया बोलो।
अभी अभी आप लोग ने, हम लोग ने गुरु जी के वचनामृत को पाठ किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार प्रसंग में उनके आविर्भाव का कारण वर्णन करके सुनाया है, और आज्ञा भी है कि जब देवकी बसने कंस कारागार में है उस समय देवता लोग उस उस कारागार में उपस्थित हुई, वहां आकर के फूलों की वर्षा करने लगे, साथ ही साथ हाथ जोड़कर स्तव स्तुति प्रार्थना करने लगे। वे बोले, हे भगवान, जो लोग आपके भक्त जन हैं, आपके आपके उनके प्रति कितना अनुग्रह है, तथा नते माधव तावका कचित, जो आपके निजजन बन जाते हैं, जिन्होंने अपना पुत्र बना लिया, सखा बना लिया, प्रियतम बना लिया, इस प्रकार त्वयि बद्ध सौहृदा, तुम्हारे बीच में बंधु भाव बंधुत्व भाव को जोड़ लिया, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई भय नहीं होता, कोई बाधा नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, निर्भय निडर होकर सर्वत्र विचरण करते। क्यों दया भी गुप्ता तुम्हें उन्होंने अपना लिया है, इस कारण उनको कोई भय नहीं। आरोग्य कृच्छेन परम पदम तत विमुक्त मान, जो लोग अपने को कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान निरंकार निर्विशेष, अपने को ब्रह्म बनने को सोचते हैं, कठोर साधना करते हैं, परंतु उस कठोर साधना करके भी बड़े त्याग वैराग्य के साथ बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, हजार आठ एक साथ ब्रह्मलीन संत पुरुष बन जाते हैं। इतने त्यागी महात्मा हो करके भी उनका हृदय मलिन बना हुआ, पाषाण के समान पत्थर दीन शुष्क हृदय, कृष्ण भक्ति रस के द्वारा भीगा नहीं, भक्ति रस का कोई संचार नहीं, इसलिए जीवन भर खली कूटते पिए भूसा कूटते पिए उनका गया कोई काम का नहीं। पतंते अधर अनादृत स्मत अंग्रय, आपके चरण कमल का अनादर करने के कारण वे अधर पतित होते हैं, नीचे गिरते चले जाते हैं, जीवन में वास्तविक कल्याण उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए देव नारायण बोले कि हे प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्य स्वरूप, विशुद्ध संत में स्वयं अवस्थित होकर वसुदेव नंदन के रूप में आप अवतरित हो रहे हैं, आप तो वासुदेव, इसलिए हे भगवान, विशुद्ध संत में जहां समस्त प्रकार की कामनाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, एकमात्र हृदय में प्रेम भाव बना हुआ है, उन भक्त जनों की आकुलता उत्कंठा व्याकुलता को देखते हुए, जो आपकी साथ साथ सेवा पाने के लिए अतिशय उत्कंठी, उनके प्रति अनुग्रह कहने के लिए आपका अवतार होता है, पहले पहले युग में आप हैं, वत्स कूर्म वराह निसिंह वामन राम परशुराम विविध अवतारों में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, त्वं पासि नः त्रिभुवनं यथा धुनेश भारं भुवहर यदुत्तम वंदनं ते, युग युग में अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारते हुए अपने लीलाओं को प्रकट किए, इस समय समस्त अवतारों को एकत्रीभूत करते हुए आप पूर्णावतारी स्वयं अवतरित हो रहे हैं, इसलिए कहा है संत अवतरा वहव पंकज नावस सर्वतो भद्र कृष्णा अन्न को वा लता सभी प्रेमदो भवते। भगवान पंकज नाव के बहुत से अवतार तो हुए हैं, परंतु कृष्ण बिना ऐसे कौन से अवतार जो कि लता पतान तक सबको प्रेम दान करें, अपने माधुरी के खान जिन माधुरी के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया, जिन माधुरी के द्वारा आप सभी को प्रेम वितरण करेंगे, हे प्रभु, हे जदुत्तम, आपके चरण कमल की हम वंदना करते हैं, जब आप प्रकटित होकर उन मधुर लीलाओं को करेंगे, आपके लीला कथाओं का आस्वादन करके हम सभी तृप्त होंगे। प्रभु आप अपने प्रेमी जनों का आनंद वर्धन करने के लिए स्वयं लीला विलास करते हैं, एक और व्यतिरिक रूप से असुरों का दलन करते हैं। इस प्रकार आपकी जो अद्भुत लीलाएं हैं, हे प्रभु आपको पुनः पुनः नमन। इस प्रकार जबकि देवताओं ने स्तव स्तुति प्रार्थना की, उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अथ गुण अथ सर्वगुणों के काल परम शोक। जिस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वे तो कालातीत हैं, पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम है, वे किसी काल के अंतर्गत तो है नहीं। जहां नजत्र काल विक्रम, जिस गोलो वृंदावन में भगवान के धाम में काल का कोई प्रभाव नहीं, नजत्र माया क्यूता परे, जहां पर माया का भी कोई प्रवेश नहीं, दूसरों का प्रवेश कहां संभव। इस प्रकार भगवान श्री हरि जीवों के प्रति अपार करुणा विस्तार करने के लिए काल को भी अंगीकार किया, और उस काल को अंगीकार करते हुए समस्त गुणों से मंडित परिमंडित कर दिया। अथ सर्व गुणों के काल परम शोभन। जब भगवान श्री हरि आविर्भूत होने लगे, उस समय काल समस्त ऋतुओं के द्वारा, समस्त ग्रह नक्षत्र समस्त सतगुणों के द्वारा, उच्च ग्रह उच्च नक्षत्र और समस्त ऋतुओं के द्वारा, समस्त ऋतुओं के फूलों के द्वारा, फलों के द्वारा वनराजी को सुशोभित कर दिया, समस्त पशु पक्षियों के मन को आनंदित कर दिया। सभी आनंद में नृत्य करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। पृथ्वी पर चारों ओर मंगल ही मंगल अनुभव होने लगा। ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ब्राह्मणों के मुंह से अपने वेद मंत्र समूह उच्चरित होने लगे। गंधर्व सिद्ध चारण गुह्यर विद्याधर, वे सभी नाचने लगे, गाने लगे, चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार बादल भी मंदन मंद गर्जन के साथ पुष्प वर्षा के रूप में मंद मंद बारिश भी कराने लगी। उस समय चारों ओर सुखावह समुद्र भी गरजने लगे, नदियां उफनने लगी, सबका मन प्रसन्न हो उठा। जबकि भादों की महिला कृष्ण पंच अष्टमी तिथि बुधवार दिन के रात्रि का मध्य भाग, जबकि द्विजराज चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में आज कलाओं में जहां उदित होने वाले द्विजराज चंद्रमा अपने वंश में पूर्ण चंद्र भगवान श्री हरि के जबकि आविर्भाव का समय देखा, उस समय द्विजराज चंद्रमा भी रह नहीं सके। वे सारे नियम को तोड़कर सोलह कलाओं में परिपूर्ण होकर पूर्व दिशा में उदित हो गए। जबकि भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए ऐसे समय में, जबकि देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहास है आविरासी तथा प्राच्या दिसिंदुरीव पुष्कल। देवक्याम देव रूपिण्याम, वो देवकी कैसी है? वो कोई साधारण नारी नहीं है, जो भगवान की माता है उनका कोई भौतिक शरीर या अपराजित देह नहीं, वो तो अपराजित सच्चिदानंद स्वरूप देव रूपिणी देवकी है। वैसे माता यशोदा जो कि कृष्ण की नित्य माता है, नंद बाबा नित्य पिता है, वे लोग भौतिक जगत के कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई पुण्य जन्म विशेष भी नहीं, वे तो कृष्ण के नित्य माता पिता है। जहां भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं, गर्भ काले तुम असंपूर्ण अष्टमी मासिते स्त्रियों देवकी च यशोदा च सुषुवाते च जो कि कृष्ण जामल में वर्णन होता है, जिस समय हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं 10 महीना की गिनती में एक एक दिन करके गिन रहा है, उधर कंस पंचम चतुर भगवान श्री कृष्ण 8वें महीना में, जबकि देवकी का केवल 8वें महीना पूरा है, गर्भकाल अभी पूरा नहीं हुआ है और संपूर्ण है, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम अवतार है, प्रेम में कहा गया है भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके पश्चात भाव होता है, वही भाव सप्तम स्टेज जो कि संकर्षण अनंत देव है गुरु तत्व के रूप में है, हृदय में भाव उदित होता है, जब साधक जीवन में ही प्रेम उदय होता है उस प्रेम में ही भगवान का उदय होता है, इसलिए गर्भकाल के असंपूर्ण 8वें महीना में भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम अवतार देवकी वसुदेव नंद यशोदा के प्रेम में स्वयं आविर्भूत हुए, जिनका अगाध वात्सल्य प्रेम भगवान को प्रकट करा दिया, देवकी च यशोदा च सुषुवाते समम तदा, कृष्णमय कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार दिन के मध्य रात्रि ऐसे निशा के मध्य भाग में, जहां समस्त संसार सोए हुए हैं, कृष्ण बहिर्मुख ज्ञान भगवान को भूल कर विषो में मुक्त हो करके विषो में डूबे हुए अंधकार में सोए हुए, जहां भक्त जनों का हृदय जाग उठा, सभी आनंद में नाच रहे गा रहे हैं, ऐसे भक्त जनों के मानस पटल को आनंद मुखरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवकी के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कंस कारागार में जेल ही में प्रकट हुए, तेल ही यशोदा के गर्भ से भी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बोलो यशोदा दुलाल की, बोलो नंद नंदन श्री कृष्ण की, बोलो कृष्ण भगवान की, तमाद भूतम पाप लकमम मुझे क्षण चतुर्भुजम शंकर इस अद्भुत बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या यही परब्रह्म भगवान मेरे बालक होकर आए? देवकी के आठवें गर्भ में क्या सचमुच उन्होंने जन्म लिया या प्रकट हुए? वसुदेव महाराज अतिशय विस्मय से उत्फुल्लित हो उठे। सविस्मयो फुल्ल विलोचनो हरि श्रुतम पिलो क्या नागतुं दुविस्तदा कृष्णावतार सर्व संभ्रमो प्रिंसर मुदादिगे हो युतमा प्लुतो गवा। वसुदेव महाराज अतिशय विस्मित हो गए, यही परब्रह्म भगवान वे मेरे बालक होकर आए, कहा हम जेल खाने में हंस करा जाते निपीड़ित होकर के हम परे हुए हैं। परम ब्रह्म प्रभु स्वयं भगवान श्री हरि वे कैसे, हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई हमारा कोई भी गुण नहीं, फिर भी भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए हैं। उस समय वसुदेव जी गदगद चित्त हो करके भगवान के आविर्भाव उत्सव में बड़े आनंद, उस समय आनंद और संभ्रम के कारण वे क्या करेंगे कुछ भी स्थिर नहीं कर पाए। उसी आनंद में खुशी में कृष्ण जन्म में जो कि 10,000 गायों को मणिमन दान करने का संकल्प कर दिया कि मैं 10,000 गाय दान करूं। इस प्रकार वसुदेव देवकी जहां देवकी कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम की, प्रणाम करके पर ब्रह्म भगवान को ऐश्वर्य भाव के कारण स्तुति प्रार्थना करने लगे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा के कोख से जन्म दिया। परंतु उन्होंने पहले ही जो माया को आदेश दिया कि ये जो माया मां यशोदा को भी गीत में सुना देना होगा जिससे उनको भी पता न चले। एक तो सुकुमारी यशोदा मैया का प्रथम पुत्र जिसमें मां यशोदा सो गई उन्हें भी कुछ पता नहीं, जो कि संसार को जस देने वाले पर आनंद को देने वाले जहां पर आनंद कंद वृंदावन चंद्र माता यशोदा से प्रकट किए हैं, जन्म किए हैं, उस समय किसी को भी रहस्य जानकारी नहीं। जबकि यहाँ देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करने लगे, अंत में उनके अपने रूप को छिपाने के लिए बारंबार प्रार्थना करने लगे, तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा, हे पिता हे माता, आपने पहले जन्म में हमारी कठोर तपस्या की थी, उस समय मैंने इसी चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन दिया, तब आपने मुझसे वर माना कि तुम्हारे जैसे हमें बालक हो। मैंने आपने तो एक बार एक पुत्र के लिए मांगा, मैंने 3 जन्म में 3 बार आपके बालक होकर के आया, इसलिए आपको पहचान कराने के लिए इस स्वरूप को मैंने दर्शन कराया, क्योंकि पहले आपने मेरा इस स्वरूप को ही दर्शन किया, इसलिए मैं इसी स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, जब आप डर रहे हैं तब यशोदा के गर्भ से माता यशोदा के कोख से एक कन्या का भी जन्म हुआ है, आप उसको मेरे बदले में उसे लेकर के आएंगे। तब तक कन्या का जन्म नहीं हुआ था, जब स्तुति के पश्चात हमारे गोस्वामी जनों ने कहा कि स्तुति के पश्चात जब प्रार्थना करने लगे तब वहां पर कन्या का जन्म हुआ। पहले भगवान ने जन्म लिया, उसके पश्चात उनकी अनुजा बहन हो करके जो माया ने जन्म लिया है, जो कि इस प्रकार इस जन्म रहस्य को वर्णन किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया की, बोलो भक्त के लाला की।
More on that.